तारापरी के मन में ना जाने क्या आया था। उसे राधा जैसे कपड़े पहनने का मन था। उसने राधा जैसे कपड़े पहन लिए जिनमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तारापरी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो वास्तव में राधा ही लग रही थी। जब वो बाहर आई तो अमन और मान दोनों भाई बेख्याली से उसे देख रहे थे। लेकिन तारापरी इस बात को लेकर परेशान हो गई कि उसकी शादी और मेहंदी के फंक्शन में कोई असली मेहमान नहीं आएगा, केवल वही जादू वाले मेहमान होंगे जो उसकी हल्दी में आए थे। तारापरी का दिल ये सोचकर उदास हो गया। तब करिश्मा जी ने उसे काली शक्तियों का हवाला दिया। लेकिन तारापरी को उदास देखकर मान और अमन दोनों भाई बोले, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे असली मेहमानों को लाऊंगा, और इतना ही नहीं, तुम्हारी काका माली काका उन्हें भी बुलाऊंगा। ये सुनते ही तारापरी खिल उठी। करिश्मा जी न जाने किन सोचों में गुम हो गई थी। फिर एक गहरी सांस लेकर करिश्मा जी बोली, ठीक है बेटा, जैसा मन करे तुम लोग हो करो, बस होशियार रहना। ऐसा कहकर करिश्मा जी शादी और मेहंदी की तैयारी करने के लिए अपने कमरे में चली गईं। न जाने करिश्मा जी किन सोचों में गुम थीं। उनके जाते ही तारापरी अमन और मान का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू सो मच अमन सर और मान सर। तब तारापरी के मुंह से अमन सर और मान सर सुनकर मान ने तारापरी को छेड़ना शुरू कर दिया और कहा, क्या शादी के बाद भी तुम भाई को और मुझे सर ही बुलाने वाली हो। मान की बात सुनकर तारापरी शर्मा गई और अमन का हाथ छोड़कर बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर जाने लगी। अमन मान को घूर कर देखता रहा और फिर दोनों भाई अंदर अपने कमरे की ओर जाती हुई तारापरी को देखते रहे। तारापरी की आधी से ज्यादा कमर दिखाई दे रही थी। केवल उसकी कमर के बीचों बीच एक 4 इंच की पट्टी थी जो शायद उसके ब्लाउज की थी। अमन और मान तारापरी की कमर देखकर दीवाने से हो गए और उन दोनों के तसव्वुर में राधा का चेहरा आ गया। दोनों भाइयों का मन कर रहा था कि बस जल्दी से जाकर तारापरी को पकड़ लें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। अमन और मान लालचाई नजरों से तारापरी को देख रहे थे। तारापरी समझ गई थी कि वे दोनों भाई उसे ही देख रहे हैं। तारापरी मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। तारापरी ने जानबूझकर अपने शरीर के उस हिस्से का उन दोनों को दीदार कराया था, क्योंकि वो उन दोनों को अपनी ओर आकर्षित करके अपना काम करना चाहती थी। वो उन दोनों से जल्द एक बच्चा चाहती थी, क्योंकि पिछले जन्म के अघोरी का वरदान जो उसने उस राजा को दिया था वो अभी तक उसके कानों में गूंज रहा था। तारापरी ने अमन और मान को ये कहकर टाल दिया था कि ये पिछला जन्म अगला जन्म कुछ नहीं होता है, लेकिन वो खुद इस चीज से नहीं निकल पा रही थी। जब से वो अपने राधा वाले जन्म में गई थी तब से वो अपने साथ हो रही सभी चीजों को मान चुकी थी और ये भी जान गई थी कि वो राक्षस उस अघोरी के वरदान के कारण ही उसके पीछे पड़ा हुआ था। अभी तक तारापरी को ये नहीं पता था कि उस राजा के महल में राधा के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि ये राक्षस उस जन्म से ही उसके पीछे था। तारापरी अब और उस दानव को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए बस जल्द से जल्द शादी और उसके बाद बच्चा, बस अब इससे ज्यादा वो कुछ और सोच ही नहीं रही थी। वो इन सब सोचों में गुम ही थी कि तभी करिश्मा जी उसके कमरे में आ गई। तारापरी करिश्मा जी को उस वक्त अपने कमरे में देखकर चौंक गई। करिश्मा जी ने तारापरी से कहा, बेटा आज रात को तेरी शादी है मेरे दोनों बेटों के साथ। मेरे बेटे अमन ने तेरे कहने पर बाहर दुनिया वालों को भी अपनी शादी में शामिल करने का फैसला कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है तुम बहुत खुश होगी ये सब देखकर, लेकिन बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तारापरी बोली, हाँ हाँ करिश्मा माँ, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। करिश्मा जी बोली, वो तारा बेटा, बाहर की दुनिया वाले तो सब आ जाएंगे तेरी और अमन मान की शादी में, लेकिन बेटा तेरे अपनों का क्या। तारापरी बोली, माँ मैं कुछ समझी नहीं, आप आखिर क्या कहना चाहती हैं। करिश्मा जी बोली, बेटा प्लीज मुझे गलत मत समझना, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से हो, कौन है तेरा अपना, तेरे माँ बाप हम कुछ भी तो नहीं जानते। बेटा इस शादी से पहले पहले मैं चाहती हूँ तेरे परिवार वाले भी इस शादी में शामिल होने के लिए आएं। बेटा मैं जानती हूँ मेरा इस वक्त तुम्हारे घर वालों को लेके बात करना शायद तुम्हें अच्छा न लग रहा हो, लेकिन बेटा तुमने मुझे बताया था कि तुम अनाथ हो, लेकिन बेटा अनाथ आश्रम में ही सही, कोई तो होगा जिसने बचपन से तुझे देखा होगा, पाला होगा, पोसा होगा। तारापरी करिश्मा जी की बात सुनकर सकते में आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करिश्मा जी की बातों का क्या जवाब दे। तारापरी बोली, लेकिन करिश्मा मैम अचानक आपको मेरे घर परिवार वालों की क्या सोच गई है, आखिर बात क्या है, आप मुझे साफ साफ बताइए। करिश्मा जी बोली, देखो बेटा तुम तो जानती हो मेरे दोनों बेटे तुमसे मोहब्बत करते हैं, और मेरे बेटे ही नहीं मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन बेटा हम लोग जिस दुनिया से हैं उस दुनिया का पहला वसूल ये है कि हम लोग अपनी परछाई तक पर यकीन नहीं करते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है बेटी, जिन्नतों की कोई परछाई नहीं होती है। तारा बेटी मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ तुमसे तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं, और अगर तुम्हारा कोई परिवार नहीं है जैसा कि तुम कहती आई हो तो कोई तो होगा जो ये कह सके कि हाँ बचपन से लेकर आज तक मैंने तारा को देखा है या पाला है। अब बेटा देखो बुरा ना मानना, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बेटों की जिंदगी में किसे लेकर आ रही हूँ मेरे लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैं अपने बेटों को यूं ही किसी के भी हवाले नहीं कर सकती हूँ। करिश्मा जी ने दो टूक बात की थी जिसे सुनकर तारापरी का माथा ठलक गया था। करिश्मा जी आगे बोली, बेटा मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देती हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर तुम या तो अपने घर आश्रम या कोई भी ऐसी जगह जहाँ तुम रहती थी उसका पता बताओ,
मैं खुद जाकर वहां तसल्ली करना चाहती हूँ अपनी। मुझे पूरा यकीन है बेटा, तुम एक माँ की भावनाओं को जरूर समझोगी। बेटा, अगर तुमने एक घंटे में किसी अपने का पता नहीं बताया तो मुझे मजबूरन आज रात को होने वाली शादी टालनी होगी। ये सुनते ही तारा परी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि करिश्मा जी ऐसी भी कोई बात करेंगी। वो तो इसी चीज को लेकर खुश थी कि आज आखिरकार उसकी और नेक दिल इंसानों की शादी हो जाएगी और वो जल्दी से एक बच्चे को जन्म दे देगी। और वैसे भी परीलोक में तो एक दिन में ही बच्चा पैदा होकर बड़ा हो जाता था, लेकिन पृथ्वीलोक में तो उसे पूरे 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखना होगा और फिर जब वो धीरे धीरे साल महीने में बड़ा होता चला जाएगा। तारापरी को सोचों में गुम छोड़कर करिश्मा जी वहां से चली गई। लेकिन अब तारापरी फंस गई थी। अब वो क्या करेगी, ये सोच सोचकर उसका दिमाग चकराने लगा था। तारापरी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। यही सोच सोचकर वो परेशान हो उठी थी। तब तारापरी को छोटी जलपरी की याद आई और उसने जैसे ही छोटी जलपरी को बुलाया वो प्रकट हो गई। तारापरी ने अपनी परेशानी छोटी जलपरी को बताई, जिसे सुनकर छोटी जलपरी ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ परी रानी, लेकिन मैं केवल 2 बार ही आपकी मदद कर सकती थी। तारापरी बोली, लेकिन तुम्हारी रानी ने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरी मदद करोगी। छोटी जलपरी बोली, हाँ रानी परी, ये सच था, लेकिन काली शक्तियों के जंगल में जाने के बाद मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। मैं अब आपकी और मदद नहीं कर पाऊंगी।
ये सुनते ही तारापरी सदमे में आ गई और वो ये समझ गई कि छोटी जलपरी जो कह रही थी वो सच था। और देखते ही देखते छोटी जलपरी एक रंग बिरंगी रोशनी बनकर हवा में उड़ गई। तारापरी खाली नजरों से छोटी जलपरी को जाते हुए देखने लगी। तारापरी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे बाहर कुछ शोरगुल की आवाज सुनाई देने लगी। तारापरी जल्दी से बाहर निकल गई और देखा कि वहां कुछ लोग आए हुए थे जो नीचे हॉल की सजावट कर रहे थे। तारापरी उन्हें देखकर चौंक गई। तभी अमन और मान वहां आ गए और तारापरी को वहां देखकर बोले, क्या हुआ, आप बाहर क्यों आ गई हो, आप जाओ जाकर आराम करो, और ये लोग घर की सजावट करने के लिए आए हुए हैं। तभी तारापरी को उनमें से एक आदमी कुछ अजीब सा लगा। तारापरी को उससे किसी जानवर की महक आ रही थी। तारापरी उसके बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन वो उस वक्त करिश्मा जी की बातों को लेकर परेशान थी, इसलिए उसने उस आदमी को अनदेखा कर दिया। और वो आदमी मन ही मन खुश था कि उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि काली शक्तियों का मालिक अमित का भेजा गया बिच्छू था, जो वहां तारापरी को लेने के लिए आया हुआ था। और अगर वो किसी वजह से तारापरी को नहीं ले आ सकता था तो फिर उसे तारापरी की जान लेनी थी, लेकिन उसकी शादी अमन और मान से नहीं होने देनी थी। तारापरी ने खाली खाली नजरों से चारों ओर देखा। तब उसकी आंखों के खालीपन को अमन और मान ने बखूबी नोटिस कर लिया था। तारापरी एक नज़र सब पर डालती हुई अपने कमरे में चली गई। वहीं उस बिच्छू की कड़ी नज़र तारापरी पर ही थी। वो उसे ही देखे जा रहा था कि आखिर वो किस ओर जा रही है, क्योंकि बिच्छू को ज़्यादा देर करने की आदत नहीं थी। वो अपना काम जल्दी करने में यकीन करता था और कुछ सोचकर सजावट के बहाने से तारापरी के कमरे की ओर बढ़ चला।